नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रहित इस सरकार के लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सर्वोत्तम और निष्ठापूर्ण प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित नहीं हो सका।
साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।
श्री मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण समय की मांग है।
देश की 50% यानी आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र प्रयास था, नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर महिलाओं की प्रगति और सशक्तिकरण में बाधा डालने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी सब कुछ भूल सकती है, पर अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि संसद में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया और इसके नहीं पारित होने पर सदन में मेजे थपथपाकर जश्न मनाया। इसकी कसक महिलाओं के मन में हमेशा रहेगी। राजधानी दिल्ली में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास तक मार्च निकाला और विपक्ष की कथित महिला विरोधी राजनीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संसद में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने को महिलाओं के अधिकार के साथ अन्याय बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पूल के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 12,980 करोड़ रुपए का एक सॉवरेन गारंटी फंड बनाने का निर्णय लिया गया है। ये फंड समुद्री जोखिमों से निपटने और भारतीय जहाजों को बीमा सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। यह इस वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रमुख नेता राज्यभर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर के कोडियासिया में एनडीए की रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन नहीं करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रानीपेट और थेरियूर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के जरिए तमिलनाडु में नियंत्रण करना चाहती है। तमिलनाडु में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार 21 अप्रैल को समाप्त होगा। सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 23 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को होगी। कोयंबटूर और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पूर्व तकनीकी रूप से श्रेष्ठ निगरानी प्रक्रिया बढ़ा दी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा किसी अवांछित घटना से मुक्त रखने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। भारत ने आज सवेरे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज शाम नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ बैठक के लिए भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथली को बुलाया। बैठक के दौरान श्री मिश्री ने भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु का 176 रन का लक्ष्य दिल्ली ने अंतिम ओवर में हासिल कर लिया। एक अन्य मैच में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।